الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سلسلہ ہے بندوں کے حقوق آج جن حقوق کے حوالے سے کلام کریں گے ان کا تعلق تمام طبقات زندگی سے ہے ہر طرح کے لوگ اور ہر قسم کے لوگ سب کے ساتھ جو ہمیں معاملات کرنے چاہیے بطور خاص جو مسلمان ہیں جن کے ساتھ ہماری اسلامی اخوت ہے دینی اخوت ہے بھائی چارہ ہے ان کے ساتھ ہمارے معاملات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جو تمام انسانوں کے لیے ہیں حقوق کا جو درجہ ہے کچھ تو خاص تعلق کی وجہ سے ہوتے ہیں جیسے والدین کے بارے میں بیوی کے حقوق شوہر کے حقوق اولاد کے حقوق پڑوسی کے حقوق تو یہ ایک خاص نسبت اور تعلق ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کے حق ادا کرتے ہیں یہاں جن کا بیان ہے وہ ہیں کہ جن کا تعلق یا تو اسلام کی وجہ سے ہے اور یا انسان ہونے کی وجہ سے ان میں سے پہلی شے کہ جو قرابت اسلامی کی وجہ سے ہمارے اوپر حق بنتی ہے وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے ہم پسند نہ کریں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کی جائے یہ وہ حق ہے کہ جو حدیث مبارک میں فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جو ہمیں اپنے لیے پسند ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرے ایک اور حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے جیسے سب مسلمان مل کر جسد واحد ہیں ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی اعضاء کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے پاؤں میں تکلیف ہو تو پورا بدن اسے محسوس کرتا ہے تو فرمایا کہ مسلمانوں کا جو باہمی تعلق ہے جو مودت محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے وہ ایسا ہے کہ اگر ایک کو تکلیف پہنچے تو سارے بے قرار ہو جائیں اور سب کی یہ کوشش ہو کہ اس حصے سے تکلیف دور ہو جائے اس مسلمان سے تکلیف دور ہو جائے ایک اور حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ دوزخ سے نجات حاصل کرے اسے چاہیے کہ اس حال میں زندگی بسر کرے کہ جب اسے موت آئے تو کلمہ شہادت پر موت آئے ایک بات اور دوسری بات کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے یہ احادیث طیبہ جو ہیں یہ اس اسلامی ادب کو اور اس حق کو بیان کرتی ہیں کہ جو ہمارے ہاں بڑا مفقود ہوتا جا رہا ہے جو بڑا کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں اپنی بھلائی اور اپنی بہتری ہی کی طرف ان کی توجہ ہے اور یہ سوچ کہ میں دوسرے کے لیے وہی سوچوں جو اپنے لیے سوچتا ہوں میں دوسرے کی خاطر بھی وہی کروں جو اپنے لیے کرتا ہوں اور جو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نہ ہو میں دوسرے کے لیے بھی نہ کروں روز بروز دن بدن اس خوبی میں کمی آتی جا رہی ہے جو اسلام کی ایک بڑی بنیادی تعلیم ہے، اس کے سیکھنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس پر غور کرنے سے ہم بڑی تیزی کے ساتھ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سوچ بنی ہوئی ہو کہ ہم دوسروں کے لیے وہ کریں جو اپنے لیے کرنا پسند کرتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو شاید ہمارے ہزاروں مسائل حل ہو جائیں۔ ہم اپنی زندگی کے اگر تھوڑے سے پہلو دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل و عیال خوشحال ہوں، ہمارے بچے خوشحال ہوں، ہمارے گھر میں خوشحالی ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اب اگر یہی سوچ دوسرے کے اعتبار سے بن جائے کہ اس کے گھر میں بھی خوشحالی آئے، اسے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی زندگی آسانی کے ساتھ گزارے، اسے بھی زندگی کے اندر سکون، آرام اور راحت ملے، اگر یہ سوچ بن جائے تو اب خود غور کریں کہ ہم کس قدر پرسکون معاشرہ وجود میں لا سکتے ہیں۔ لہذا یہ پہلا حق جو ہے یہ بڑا اہم ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شے کو کیا قرار دیا؟ فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے تکلیف نہ دے، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے تکلیف نہ دے۔ یہ بڑا بنیادی حق ہے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرا محفوظ رہے۔ وہ تکلیف گالی کی صورت میں ہے، وہ مارنے کی صورت میں ہے، وہ ظلم کی صورت میں ہے، وہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی صورت میں ہے، وہ کسی کو گھورنے کی صورت میں ہے، وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی صورت میں ہے، ہماری طرف سے دوسرے کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو مسلمان کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرا مسلمان سلامتی میں رہے۔ پھر فرمایا کہ جانتے ہو کہ مومن کون ہوتا ہے؟ عرض کی، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے ایمان والوں کو اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں خطرہ نہ ہو، امن ہو۔ مومن وہ ہے کہ جس سے دوسروں کو یہ خطرہ نہ ہو کہ ہماری جان کو یہ نقصان پہنچائے گا یا ہمارے مال کو نقصان پہنچائے گا۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ مہاجر وہ ہوتا ہے جو برے کاموں سے ہجرت اختیار کر لے، یعنی چھوڑ دے۔ تو یہ مسلمان، مومن اور مہاجر۔ مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، مومن وہ کہ جس سے دوسرے مسلمان یہ سمجھیں کہ ہماری جان اور مال کو امن رہے گا، یہ مومن ہے، اور مہاجر وہ جو برائی کو چھوڑ دے۔ یہ ہے ایک اعلیٰ کیٹیگری، ایک بنیادی خصوصیت اور وصف اور بنیادی اخلاقیات جو ایک مسلمان، ایک مومن اور ایک مہاجر میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف اپنی آنکھ سے ایسا اشارہ کرے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ آنکھ سے صرف اشارہ کرے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو، فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اب آپ غور کریں کہ آنکھ کے ذریعے کسی کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ آنکھ کے ذریعے کسی کو گھور کے دیکھا جا سکتا ہے، سامنے والا خوفزدہ ہو سکتا ہے، اس کو ایسا تو نہیں ہے کیونکہ جسمانی تکلیف پہنچے گی، لیکن اتنی سی تکلیف بھی جو ہے، یا کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اس کو محسوس ہوا کہ یار اس نے مجھے جو ہے وہ تحقیر کی نظر سے دیکھا ہے، تو فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنی آنکھ سے کسی کی طرف ایسا اشارہ کرے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ جو مسلمان کے بنیادی اوصاف میں سے ہے، یہ اسے بیان کیا گیا۔ تو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ ایک بڑا بنیادی اسلامی انسانی حق ہے۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. بلکہ یہ جو تکلیف نہ پہنچانے کا معاملہ ہے یہ تو اتنا اہم ہے کہ انسان تو انسان, جانوروں تک کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ جو اپنے گھر میں کوئی پالنے کے لیے جانور یا پرندے رکھے, جانور یا پرندے رکھے تو فرمایا کہ وہ ان کے کھانے دانے اور پانی کا بہت زیادہ خیال کرے, حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے 70 مرتبہ دانہ پیش کرے, ایک دن میں 70 مرتبہ ان کے سامنے دانہ پیش کرے تاکہ یہ پرندے جو ہیں یہ بھوکے نہ رہیں, ان کے سامنے پانی پیش کرے تاکہ وہ پیاسے نہ رہیں. یہ ہے جانور کا حق. اسی طرح اگر گھر میں بلی رکھی ہوئی ہے تو اب اس کا بھی حق ہے کہ اب اس کے کھانے پانی پینے کا پراپر انتظام کیا جائے. تو اب جس دین کے اندر جانوروں کے بارے میں یہ تاکید ہو, وہاں پر انسانوں کے بارے میں تاکید خود سمجھ لیں کہ کسی انسان کا خیال کرنا کتنا اہم ہوگا, اور پھر کسی کی تکلیف کو دور کر دینا کہ کسی کو کسی وجہ سے اذیت پہنچتی ہے, کوئی ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اگر وہ دور کر دی گئی تو اس کا فائدہ کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. حدیث مبارک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا جو خوشی کے اندر جھومتا پھر رہا تھا, یعنی بڑے مزے کے اندر وہ جنت میں جھوم رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا, اور فرمایا کہ یہ مقام اور یہ جنت میں اسے یہ جو جگہ ملی کس وجہ سے, فرمایا صرف اتنی بات سے کہ دنیا میں اس نے ایک راستے سے ایسا درخت کاٹ دیا تھا کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی. بس اتنا کام, کبھی راستے کے اندر ایک درخت تھا, ہر آنے جانے والے کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی, اس نے کہا یا لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے میں درخت کاٹ دیتا ہوں تاکہ گزرنے والوں کو سہولت ہو جائے, تو اس نے درخت کاٹ دیا. تو یہ جو لوگوں کو تکلیف سے بچایا اس نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے وہ جنت کے اندر اتنے مزے کے اندر بیٹھا ہوا. تو یہ جنت حاصل کرنے کا, یہ رب کی رضا پانے کا یہ کتنا آسان طریقہ ہے, کتنا آسان طریقہ ہے. آپ یقین کریں کہ ہم تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال کرنا شروع کر دیں کہ یہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور اگر کوئی تکلیف کی شے ہے تو میں اسے جو ہے وہ دور کر دوں. ہم راستے میں جاتے ہیں, بعض اوقات کسی ایسی جگہ کو پتھر پڑا ہوتا ہے, کوئی روڑا پڑا ہوتا ہے, کوئی اینٹ پڑی ہوتی ہے کہ آنے جانے والے کو ٹھوکر لگ سکتی, یا جو ہے وہ بائک وغیرہ گزرے گی تو اس کے پھسلنے کا اندیشہ ہے تو اس کو ہٹا دیں. اور یہ جو ہٹانا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے, اماں تعط الغا اسے کہتے ہیں, راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا, فرمایا یہ صدقہ ہے. اچھا, اسی طریقے سے اپنے گھر کے باہر کوئی ایسی شے نہ پھینکے کہ جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہو. گھر کا کوڑا کرکٹ جمع کیا سارا باہر پھینک دیا, گھر میں جو ہے وہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ فرش دھویا سارا پانی جو گلی کے اندر چلا گیا, یا گاڑی کو دھویا اور گلی کے اندر جو وہ پانی کھڑا ہو گیا, یا یہ ہے کہ اپنے گھر کا گٹر وغیرہ صحیح طریقے سے صاف نہ کیا, اس نے رس رس کے جو ہے نا وہ سڑک ہی خراب کر دی, گلی خراب کر دی. یہ وہ چیزیں جو آئے دن جو ہے جدھر سے گزر جائیں یہ نظر آتی. تو دوسروں کو تکلیف سے بچانے والے بنے, تکلیف پہنچانے والے بنے, یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اور اس کی کمی کا نتیجہ جو ہے وہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں. اور یہ تکلیف جو ہے, یہ تکلیف پہنچانا اور تکلیف سے بچانا, اس کی جو صورتیں ہیں وہ گھر سے لے کے وہ شاید بہت بڑے لیول تک جو ہے وہ یہ چیزیں جاتی ہیں. گھر کے اندر بھی بیسی چیزیں ایسی ہوتی, گھر میں کوئی شے ایسی جگہ رکھ دی جس سے کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے, کوئی چھری وغیرہ ایسی جگہ رکھ دی کہ جہاں سے کوئی سامان اٹھاتے اندھیرے میں اس کو لگ سکتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چیزوں تک اگر بنیادی سوچ یہ بن جائے نا کہ مجھے تکلیف نہیں پہنچانی, تو پھر انسان بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے اب یہ جو احادیث میں فرمایا گیا کہ ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, اب اس میں جو آگے تفصیل ہے وہ بڑی واضح ہے. زبان سے کیسے تکلیف پہنچتی ہے, آپ کسی کی غیبت کریں گے اور اسے پتہ چل جائے گا اسے تکلیف پہنچے گی, اور نہ بھی پتہ چلے تو غیبت تو حرام ہے, گناہ کبیر ہے. اسی طرح چغلی کریں گے کہ دو افراد میں آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا دیا, ایک کے بعد دوسرے کو بتا کے اس کو اس کے بعد اس کو بتا کے لڑائی کروا دی. या किसी को कोई तहकीर वाला जुमला बोल दिया, को उसकी दिल शिकनी का और उसकी दिल आज़ारी का जुमला बोल दिया, या किसी को गाली दे दी, या किसी को ताना दे दिया, उसके कद काठ जो है वो वगैरह के हवाले से उसे कुछ बुरा कह दिया, उसके लिबास की वजह से, उसकी गाड़ी की वजह से, उसके घर की वजह से, उसके किसी फेल की वजह से उसे बुरा कह दिया, तो ये ज़बान से दूसरे को तकलीफ पहुँचाना हुआ। और जब शरीयत की लगाम ज़बान पर नहीं होती तो ज़बान बेलगाम हो जाती। और आजकल अक्सरियत का मामला यही है कि ज़बानें बेलगाम, किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, किसी पे बोहतान लगा देना, किसी के बारे में कोई भी सख्त से सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेना बड़ा आम है। हाँ, वो सियासी मैदान में हो, या वो कारोबारी फील्ड में हो, या वो किसी और शोबाए ज़िंदगी के अंदर हो, दूसरों को इल्ज़ाम देना, दूसरों पे बोहतान लगा देना, इल्ज़ाम तराशी करना, सख्त से सख्त जुमले बोलना, बुरा भला कहना, ये सब जो है ये हमारे कल्चर में दाखिल हो चुका है। जबकि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से दूसरे महफूज रहे। तो लिहाजा ये चीज़ जितनी कम होती जाएगी मुआशरे में बेसुकूनी उतनी फैलती जाएगी, और जितना ज़बान की हिफाजत बढ़ती जाएगी मुआशरे में सुकून बढ़ता जाएगा। लिहाजा इंतिशार फैलाने वाला काम और नफ़रतें फैलाने वाला काम ना किया जाए, तकलीफ़ देने का और ईज़ा पहुंचाने का काम ना किया जाए, ज़बान को और हाथ को कंट्रोल में रखा जाए। जिसकी हाथ पे कुदरत है वो हाथ के ज़रिए दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा देता है, जिसकी ज़बान जो है वो कंट्रोल में नहीं है वो ज़बान के ज़रिए दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा देता है। तो ये इस्लामी तालीम के सरासर खिलाफ, इस्लामी तालीम वही है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान मैंने अर्ज किया कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से पूछा कि मुसलमान कौन है, सहाबा ने कहा अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान वो जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान सलामत। तो अब आप देख लें कि हमारी जबान से दूसरे कितने सलामत हैं। अगर तो सलामत हैं तो फिर हम वाकई इस हदीस पे पूरे उतरते हैं और हम सही मुसलमान हैं, और अगर हमारी ज़बान से दूसरे सलामत नहीं तो फिर इसका मतलब है कि हमारा इस्लाम बड़ा कमज़ोर है, हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर है। इसके बाद एक और हक, वो ये है कि किसी के साथ भी तकब्बुर के साथ पेश ना आया जाए, किसी के साथ तकब्बुर के साथ पेश ना आया जाए। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। तकब्बुर का ताल्लुक जो है, तकब्बुर किसे कहते हैं, तकब्बुर का मतलब होता है दूसरे को हकीर समझना, दूसरे को घटिया समझना, दूसरे को अपने से कमतर समझना, तकब्बुर ये। और इसका उलट होता है आजजी, जो पॉजिटिव है, जो मुस्बत खूबी है वो है आजजी। तो तकब्बुर से पेश ना आया जाए, तकब्बुर से पेश ना आए, ये एक हक है जो हर बंदे का है, हर मुसलमान का। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक क्या है, आजजी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन, अल्लाह के महबूब, सारी कायनात से अफसल, तमाम फरिश्तों से, नबियों से, रसूलों से अफसल, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजजी और आपका हुस्न अखलाक, आपकी मिलनसारी, आपका खूबसूरत रवैया कैसा था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवा औरतों और मिस्कीनों के साथ तशरीफ ले जाते और जो उनका काम होता वो पूरा कर दिया करते थे, बेवाओं के साथ, मिस्कीनों के साथ शफकत का सलूक। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम का रवैया और बाकी उमूर के अंदर कि आजसी पसंद फरमाते थे, आपके रवैये से दूसरे को गलत फीलिंग नहीं होती थी, आपकी नबूवत का रोब जो है वो अव्वल नज़र के अंदर दूसरे को मुतासिर करता था, वो एक शान है, लेकिन उस रवैये के अंदर एक बड़ाई का एहसास दूसरे के सामने आप नहीं पेश किया करते थे। तो अब क्या है, अब ये जो तकब्बुर वाला रवैया है, ये जो तकब्बुर करना है, इसकी कई सूरतें होती, ज़बान से भी तकब्बुर होता है, अंदाज से भी तकब्बुर होता है, रवैये से भी तकब्बुर होता है, चलने से भी तकब्बुर होता है, बैठने के अंदाज में भी तकब्बुर होता है। तो अब किसी भी सूरत में दूसरों के ऊपर अपनी ऐसी बर्तरी ना जताई जाए, कि जिससे लगे कि हम दूसरों को कमतर समझ रहे हैं और अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हैं। तो अब इसकी जितनी सूरतें हैं, अब वो थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपके सामने आती जाएंगी कि कहाँ पर किसी की गुफ्तगू का अंदाज, या किसी के मिलने का अंदाज, या किसी के देखने का अंदाज, या किसी के बोलने का अंदाज, या किसी के लोगों के पास जाने का अंदाज, ये तकब्बुर पर मबनी है या उससे हटके है। ओवरऑल गुफ्तगू कर रहा हूं, फर्द मुअय्यन के बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये बंदा देखो जी ऐसे मिल रहा है ना, ये तकब्बुर कर रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर तकब्बुर के अपने ही मफहूम होते हैं कि अगर पास से गुजरने वाले ने सलाम नहीं लिया तो बोला तकब्बुर है, और अगर कोई आदमी जो है वो भाग के आके मुलाकात की कोशिश करे और सामने वाला मसरूफ है और उसने पूरी तवज्जो से मुलाकात नहीं की तो बोलेंगे तकब्बुर है। ये गलत है, किसी फर्द मुअय्यन के बारे में यूँ नहीं कह सकते। लेकिन हम अपने रवैये के अतबार से गौर करें, हमारा एक अजीब मसला ये होता है कि हम जो सुनते हैं उस पर दूसरे को परखना शुरू कर देते हैं बजाय अपने आप को परखने। हमने देखा कि भाई तकब्बुर ये होता है, अब हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे अंदर है या नहीं, हम ये देखेंगे इसमें है या नहीं। तो ये जो चीज़ें और ये जो तालीमात होती हैं, ये इसलिए नहीं होती कि हम उसको जो है एक बाकायदा जो है एक वो एक अपना आईना बना के दूसरे को देखना शुरू कर दें। वो ये है, वो आईना अपने लिए इस्तेमाल करें, हम उस चीज़ को ये देखें हमारे अंदर है या नहीं, ये नहीं है उसके अंदर है या नहीं, उसके अंदर नहीं, हमने अपनी इस्लाह करनी है, हमने अपने आप को देखना है। तो लोगों से मिलते हुए जो है वो तकब्बुर का रवैया ना किया जाए। अच्छा, फिर इसमें तकब्बुर की वजह भी होती, दूसरे को हकीर समझने की वजह भी होती, इसमें उसकी बरादरी भी हो सकती है, ज़ात भी हो सकती है, उसका पैसा भी हो सकता है, उसका ओहदा भी हो सकता है, मनसब भी हो सकता है, उसकी हैसियत भी हो सकती है, उसके घर के हालात भी हो सकते हैं, और उसका घर कैसा है ये भी हो सकता है, उसकी गाड़ी कैसी है ये भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के जरिए दूसरों की शख्सियत को ना परखें, हकारत के एतबार से, बड़ाई के एतबार से, क्योंकि जो मकाम व मरतबा है वो किरदार का होता है, गाड़ी का नहीं होता। मकाम व मरतबा जो है वो इंसान के अखलाक का होता है, उसके ज़ाहरी लिबास का नहीं होता। तो इससे कोई पैमाना नहीं है कि हम लिबास की वजह से किसी की जजमेंट करें। तो हम अपने एतबार से एक दूसरों का हक समझते हुए उनके साथ रवैया ये करें कि हम तकब्बुर दूसरों के साथ इख्तियार ना करें। एक और हक, और वो ये है कि किसी मुसलमान के हक में चुगलखोर की बात का एतबार ना करें। किसी ने आके बताया फलां ऐसा है, वो ये कह रहा था, उसने आपके बारे में ये कहा, इस कहने वाले की बात का एतबार ना करें। एक यह है चुगलखोरी ना करें कि खुद किसी के बारे में दूसरे के पास जाके कोई ऐसी बात कहें कि जो उनमें नफरतों का जरिया बने। एक ये, दूसरा ये है कि हमें कोई आके बताए कि फलां शख्स आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो हम उसकी बात को तस्लीम ना करें। और ये कुरान पाक की आयत मुबारक है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स कोई खबर लेके आए तो तुम उसकी तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ला इल्मी में किसी कौम को तकलीफ पहुंचा दो, फिर तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। कि हमें किसी ने आके कहा कि भाई उसने आपको ना गाली दी थी, या आपके बारे में ना ये जुमला कहा है, अब हमने तहकीक की नहीं और जाके उस पर चढ़ दौड़े कि तुम्हारी जुरत कैसे हुई और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। वो पूछेगा भाई साहब हुआ क्या, अब हम उसको बोले तुमने ये कहा, उसने मैंने तो कहा ही नहीं। अब पता चले कि कहने वाले ने गलत कहा या कहने वाले ने कहा ही किसी और के बारे में, और हम अपने जो है वो मिजाज की वजह से और अपने इश्तियाल की वजह से उसके ऊपर चढ़ दौड़े जाते। और आप यकीन करें बीसियों मरतबा ऐसा होता है कि लड़ाई का सर पैर ही नहीं होता, उसकी बुनियाद ही कोई नहीं होती, महज ये चुगलियां जो हैं ये फसाद डलवा देती हैं, ये लड़ाइयां करवा देती। तो यूं हर सुनी सुनाई बात को इधर से सुना और इधर से निकालने के बजाय अंदर उंडेल लिया, फसाद शुरू। घरों की लड़ाइयों का तो मरकजी सबब ही ये होता है, घरों की लड़ाइयों का तो मरकजी सबब ही ये होता है। सास के पास किसी ने आके बोल दिया, वो मैंने आपका नाम लिया था ना, तो आपकी जो बहू है ना, उसका बस उसका मूड थोड़ा सा चेंज हो गया था। चलो जी, वो भले उसको उसके पेट में दर्द हुआ, उसके इसलिए उसका मूड चेंज हुआ था, या उसको कोई और बात याद आ गई हो, या क्या हुआ था, या तुम्हारे देखने के अंदर गलती हुई थी, अब वो उसके दिल में गिरा बन गए। इसी तरह की उधर की बात आके इधर बोल दी। छोटी छोटी बात ऐसी दिल में लेके बैठेंगे कि बस अब मरते दम तक वो गिरा दिल से नहीं निकलेगी। हजार वाज कर दें, हजार नसीहत कर दें, लेकिन नहीं, वो नसीहत यूं करके जना वो गुजर जाएगी और वो जो अंदर गिरा होगी वो बाकी रहेगी। तो ये जो चुगली का रवैया है और इसके सुनने का रवैया और जो एतबार करने का रवैया है, असल फसाद जो है ना वो यहां से शुरू हो जाता है। हदीस मुबारक में फरमाया कि चुगली करने वाला ये जन्नत में नहीं जाएगा, चुगली करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो अब होना क्या चाहिए कि जब कोई आके बात करे ना, और वो करे इस तरह की कि जिसका ताल्लुक चुगली के साथ है, जी आपके बारे में ये कहा, ये बोला, ये अंदाज था, ये अंदाज था, सबसे पहले उसे अपने दिल से रद्द कर दे। आपने उसे कबूल करना शुरू किया तो शैतान उसको ऐसा जो है ना वो मिर्च मसाले लगा के और ऐसा उसको छुरी की धार की तरह तेज करके आपका दिल चीरेगा कि आप पूरी जिंदगी याद करेंगे। और अगर सुनते साथ ही आपने इसको रद्द कर दिया तो मामला खत्म। बुजुर्गों के वाकयात किस तरह के हैं कि किसी बुजुर्ग से आके किसी ने कहा कि हुजूर फलां बंदा आपको ऐसा कहता था, उसने आपकी ये बुराई बयान की, तो उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है मेरे अंदर तो बहुत सारी बुराइयां, उसको एक ही पता चली, मेरे अंदर तो बहुत सारी बुराइयां, उसको एक ही पता चली। क्या हुआ? डिफ्यूज, ठंडा कर दिया। और अगर इसको आप लेके बैठ जाए कि अच्छा ये कहा, तो अब भले तकवा झाड़ते हुए अपनी तरफ से बुराई ना की उसकी, लेकिन अपने दिल में उसको बिठा लिया। और ये भी कम ही होता है कि मुंह से आगे से कुछ ना बोले और सिर्फ दिल में बिठा ले, वरना होगा यही कि उसी वक्त जवाब जरूर देंगे। अच्छा वो मेरे बारे में कह रहा, वो ओहो अच्छा वो तो ये, वो तो ऐसा, वो तो जैसा, वो तो तैसा, उसने एक आके बुराई बयान की थी, ये चार बयान कर देगा। और ये दरमियान का जो चुगलखोर है, ये अब जाते साथ ही पूरी एक पोटली बांध के, गठरी बना के ये वहां पर ले जाएगा, ये उनको जाके सुना देगा, और यहां से लड़ाइयां शुरू, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं इसी तरह की चुगलियों की वजह से। और बाज लोग क्या होते हैं, मेरा मुशाहदा है और आप में से भी बहुत सारे लोगों का मुशाहदा होगा कि बाज इतने एक्सपर्ट होते हैं चुगली करने के अंदर कि वो अगर सीधी बात भी करेंगे ना, वो पता नहीं उसमें कहां से जहर की पुड़िया डाल देते हैं। अच्छी खासी बात को भी ऐसे बोलेंगे कि एक मरतबा तो सामने वाले का जरा कलेजे को आग लग गया कि इसने बोला क्या मेरे बारे में, फिर भले बाद में समझ आया कि नहीं यार वो ऐसा नहीं कह रहा था। लेकिन ये जो चुगलखोर होते हैं, इनकी जो महारत होती है चुगली की, वो ऐसी होती है कि वो एक जुमले के अंदर क्या से क्या कर देते। मैं खुद कई ऐसे जो है ना वो लोगों को देख चुका हूं कि आके ये भी बोलेंगे ना कि फलां बंदा ये कह रहा था कि मुफ्ती साहब आए तो मैंने इनको पानी पिलाया, वो इसको भी ऐसा बोल देंगे कि बस ऐसा ही होगा कि जैसे पता नहीं पानी पिलाने के अंदर उसने कोई एहसान करने के अंदाज में बात की कि मैंने पानी पिलाया, तो यह पता नहीं क्या कर दिया। और बास तो ये जानबूझ के करते हैं, और बास की फितरत या अंदाज ऐसा होता है कि बाय डिफॉल्ट ही उनके अंदर ये चीज पाई जाती है, कंपनी फिटेड जो उनके अंदर ये चीज होती है। तो जिन लोगों को कि महसूस हो कि उनकी गुफ्तगू में ऐसा अंदाज है, तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा इस पर गौर करके इसको सही करने की कोशिश करें। उनकी ला इल्मी में भी दूसरों के लिए आजमाइश हो जाती है, तो लिहाजा ये एक बड़ा बड़ी तवज्जो तलब चीज होती है कि जो खुशियों की कातिल होती है। इसलिए वो कहते हैं ना कि वो चुगलखोर जो है वो, यानी वो खुशियों का कातिल होता है और फसाद का बानी होता है। लिहाजा चुगली करने से भी बचें और चुगली सुनने से भी बचें, और अगर कोई चुगली आके करे तो उसकी बात के ऊपर एतबार ना करें और अपने दिल से उसको मुस्तरद कर दें। शेख साबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक्या लिखा है कि किसी बुजुर्ग के पास आके किसी ने चुगली की कि जी फलां शख्स ने आपके बारे में ये जुमला कहा, तो उन बुजुर्गों ने फरमाया कि यार उसने एक तीर मारा, उस बंदे ने एक तीर मारा, वो मुझ तक नहीं पहुंचा, तुमने वो तीर उठाया और उठा के ला के मुझे मार दिया, तो मुझे तकलीफ उसके तीर से नहीं हुई, मुझे तकलीफ तुम्हारे मुझे तीर मारने से हुई। किसी बंदे ने अपने घर में बैठ के, किसी अपनी मजलिस के अंदर बैठ के जो मर्जी का बुरा कहा, उसने कुछ सख्त जुमला कहा, मुझ तक तो पहुंचा ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है तो मुझे तकलीफ भी कोई नहीं। लेकिन ये जो दरमियान का रावी होता है, ये चुगलखोर होता है, ये क्या करता है, ये उस बात को उठा के ला के हमारे ठक करके सीने में मारता है। हमें तकलीफ अब होती है, तो गोया उसके बोलने से तो तकलीफ ना हुई हमें, हमें तो तकलीफ हुई इस बंदे की वजह से। तो ये जो चोरी खाने वाला है, ये बुनियादी तौर पे असल मूजी होता है। लिहाजा इनसे अपने आप को अपना जेन बना ले, वैसे ही सोच के रखें कि भाई हमारे अंदर बहुत सारी खामी है, अगर किसी ने बयान कर दी है तो अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा। यूं चंद एक बातों के जरिए हम अपने आप को तकलीफ से बचा सकते हैं और इस जो माहौल के अंदर एक तलखी आती है हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। एक और हक वो ये है कि किसी मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा नाराज ना हो, अगर कोई सबब हो जाए, सबब भी कोई नहीं है फिर तो 1 दिन भी नाराज ना हो, लेकिन अगर कोई सबब बन ही जाए तो 3 दिन से ज्यादा नाराज ना हो। 3 दिन तक इसलिए फरमाया गया कि अगर किसी को किसी से वाकई कोई मसला हुआ, कोई तकलीफ पहुंची, कोई दुख पहुंचा, तो एक इंसानी दिल जो है वो उसकी जो फीलिंग होती है उसे वक्त लगता है जायल होने में, फिर वो सोता है, वो खाता है, वो इधर उधर मसरूफ होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फीलिंग कम हो जाती है। तो ये 3 दिन तक का उसे जो है वो एक रिलीफ पीरियड दिया गया कि 3 दिन तक उसे ये जो है वो माफी है। लेकिन अगर 3 दिन के बाद भी उसके दिल से वो रंज नहीं जाता और वो नाराजगी का इजहार नहीं छोड़ता, रंज ना जाना तो एक दूसरी बात है, वो नाराजगी का इजहार नहीं छोड़ता, तो फिर अब ये कसूरवार है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो किसी दूसरे मुसलमान के साथ 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे। किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे। और फरमाया, दोनों में बेहतरीन वो है जो सलाम करने में पहल करे, जो दूसरे से आके सलाम दे। क्यों? इसलिए कि जिसने सलाम में पहल की इसने आजजी की, जिसने सलाम में पहल की इसने हदीस के हुक्म पे अमल किया, जिसने सलाम में पहल की इसने अपने दिल से कीना निकाल दिया, जिसने सलाम में पहल की इसने अपने दिल को साफ रखा, जिसने सलाम में पहल की इसने अच्छे ताल्लुकात को फरोग दिया। वरना पहल ना करने या ना मिलने के अंदर रुकावट क्या होती है? अनानियत, कि मैं क्यों, मैं छोटा हूं, लेके खाता हूं, क्यों मिलूं, कैसे सलाम लूं, नहीं लूंगा। तो अब ये जो अनानियत है और ये जो दिल दिमाग के अंदर एक अपना ही हवा और अपनी ही शख्सियत बैठी होती है तो वो इन चीजों से रोक के रखती है। तो 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराज ना रहा जाए। एक बड़ी प्यारी रिवायत मैं अर्ज करता हूं, हजरत इकरिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम, जलीलुल कद्र पैगंबर, जिनके बारे में कुरान की पूरी सूरत है, अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम से फरमाया कि ए यूसुफ, मैंने तेरा दर्जा और तेरा नाम इसलिए बुलंद किया कि तूने अपने भाइयों को मुआफ कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों से ईजा पहुंची, तकलीफ पहुंची, और कितनी बड़ी तकलीफ पहुंची, बाप से दूर हो गए, कुएं में डाले गए, उसके बाद बेच दिए गए, फिर एक अरसा गुजरा, फिर जेल में जाना पड़ गया, सब कुछ हुआ, लेकिन सब के बावजूद आपने सुलह को तरजीह दी, आपने मुआफी को तरजीह दी, आपने शफकत को तरजीह दी, आपने मिलने को तरजीह दी, नाराजगी को खत्म कर दिया, अफो दरगुजर से काम। तो अल्लाह तबारक व तआला को यह अमल इतना प्यारा, इतना प्यारा उसकी बारगाह में हुआ कि फरमाया कि हमने तेरा नाम और तेरा दर्जा इसलिए बुलंद कर दिया कि तूने अपने भाइयों को माफ कर दिया। तो ये है नाराजगियां खत्म करके, नाराजगियां खत्म करके जो रजामंदी और अच्छे ताल्लुकात हैं उनको परवान चढ़ाना चाहिए। एक और हदीस मुबारक है, फरमाया कि अगर तू अपने भाई की गलती और खता को माफ कर देगा तो तेरी इज्जत व बुजुर्गी में ही इजाफा होगा। और एक हदीस में फरमाया कि माफ करने से इज्जत कम नहीं होती, सदका देने से माल कम नहीं होता, माफ करने से इज्जत कम नहीं होती। तो ये एक बड़ी बुनियादी सी चीज़ होती है। हमारे यहाँ एक अजीब सा मामला है कि एक तो ये है कि वैसे अखलाकी तरबियत की कमी हमारी, फिर उसके बाद ये है कि हम कुछ अपनी इस्लाह के हवाले से इतना सोचते नहीं, छोटी छोटी बातों पे इतनी लंबी नाराजगी होती है, इतनी दूर तक की नाराजगी होती है कि हैरत होती है। बाज़ोकात 40 साल का साथ, 40 साल की दोस्ती कोई एक जुमले की वजह से खत्म। हालांकि वो जुमला ऐसा होता है कि अगर उसको थोड़ा सा बंदा इग्नोर कर दे तो कर सकता है, लेकिन नहीं, बस वो ऐसा एक जुमला कैंची साबित होता है कि वो हमारे उस ताल्लुकात की रस्सी को काट देता है। रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, रिश्तेदारियों के अंदर किसी मौके के ऊपर कोई छोटी मोटी बात होगी, किसी फंक्शन के अंदर किसी को कुर्सी नहीं दी तो किसी को खाना नहीं दिया, तो किसी के आगे जाए जरा ज्यादा झुक के मिले नहीं, किसी को वेलकम नहीं कहा, तो बस भाई साहब नाराज। और खास तौर पे ये दामाद और बहनोइयों का जो मसला होता है, ये तो मेरे ख्याल में वैसे ही कोई दुनिया भर का मसला है कि हर जगह पे आगे आगे रखना, सब कुछ करना, इज्जत जो है वो देनी चाहिए, जैसा रिश्ता है उसके मुताबिक इज्जत देनी चाहिए। लेकिन बिलफर्ज अगर तो आपकी तवक्को के मुताबिक इज्जत नहीं मिली, और या ये है कि अगर मसरूफियत की वजह से थोड़ी सी अदम तवज्जो ही हो गई, तो अब इससे जिंदगी भर की दूरी और ना मिलना और ना आना और ये और वो इसका जरिया ना बना। तो हम थोड़ा सा अपनी इन चीज़ों को गौर करें कि हमारी कितनी दोस्तियां और हमारी कितनी रिश्तेदारियां छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ख़त्म हो जाती। सगे भाई एक दूसरे से दूर, सगी बहनें मिलना जुलना ख़त्म, और जुमला तो ये फरमाएंगे कि जीना मरना ख़त्म, ये मौत मैयत पे भी नहीं आएंगे, शादी में भी नहीं आएंगे, क्यों, कोई होगी होगी बात। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों पर गौर करें, हम अपनी ज़िंदगी में तलखियाँ खुद घोलते हैं। आप यकीन करें, दूसरा हमारी जिंदगी को तलख करे ये 10% कर सकता है, 90% जो हमारी जिंदगी की तलखियां हैं वो हमारी अपनी वजह से होती, हम खुद ये मौका देते हैं, हम खुद उस चीज को लेके बैठे रहते हैं। किसी के जुमले ने जो हमें तकलीफ दी होती है वो किसी एक वक्त में दी होती है, लेकिन हम उसे हर हफ्ते दोबारा याद करके अपने अंदर को छलनी करते हैं। किसी ने कोई बात कही थी या किसी का कोई रवैया हमारे साथ बुरा हुआ था, हम उसकी हफ्तावारी यादगारी मीटिंग करेंगे। अब हफ्तावारी यादगारी जब उसका जलसा करेंगे और उसमें दोबारा वही कहानी दोहराएंगे तो क्या होगा कि फिर वो अपने आप को दोबारा जख्म ताजा करेंगे। हम जख्म को सही होने ही नहीं देते, हम उसे खुरचते रहते हैं, खुरच के ताजा करते रहते हैं कि कहीं ये जख्म खत्म ही ना हो जाए। वरना जिस शय को आप इग्नोर कर दें, दुनिया के बड़ी से बड़ी शय हो, चंद दिनों के अंदर फरामोश हो जाती है, चंद दिनों में। तो हमारी जिंदगी की तकलीफें तलखियां बहुत सारी, खास तौर जिनका ताल्लुक ताल्लुकात के साथ है, रिलेशंस के साथ है, दूसरों के साथ मिलने मिलाने के साथ है, उसमें हमारी गलती शामिल होती है। कारोबार जो है लोगों के जुदा हो जाते हैं, कारोबार टूट जाते हैं और एक दूसरे से रिश्ते टूट जाते हैं, हत्ता कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात इस वजह से टूट जाते हैं। वहां पर भी कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ होता, बहुत सारे तलाक के मामला आज तक तो मैंने यही देखे हैं कि कम ऐसा होगा कि जहां पर एक पूरा पीछे एक पूरी जिंदगी की कहानी हो कि बीवी ने यूं किया यूं किया यूं किया, ये शोहर ने यूं किया यूं किया यूं किया, एक लंबी कहानी हो। तो बीसियों मरतबा बल्कि सैकड़ों मरतबा मैंने देखा है कि कोई एक छोटी सी बात, कोई एक छोटी सी बात हुई और शोहर ने ठक करके तलाक दे दिया, रिश्ता खत्म। जिंदगी भर का जो निभा था वो खत्म हो गया, बच्चे रुल गए, खुद परेशान हो गए, जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों? इसलिए कि ये जो थोड़ा सा ताल्लुकात बनाने का तरीका आना चाहिए था वो नहीं आया। लिहाजा अगर इस चीज को हम थोड़ा सा रियलाइज कर लें, इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि हमें ताल्लुकात तोड़ने का माहिर नहीं होना चाहिए, ताल्लुकात जोड़ने का माहिर होना चाहिए, ताल्लुकात खत्म करने का माहिर नहीं होना चाहिए, ताल्लुकात बनाना आना चाहिए। अगर हम ये सीख ले तो हमारी जिंदगी में बहुत सी आसानियां, राहतें और सुकून आ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीहिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। कर मुझ पे कर दे।